प्रातः क्लास है 7 मार्च 1967 जब ब्रह्मा बाबा जिंदा थे उस समय की वाणी है। तुम बच्चे हो, बच्चे की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो कहेंगे भले यहां सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि बाप के शिकीले बच्चे हैं ना, शिकीले बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए। कितने समय के बाद मिले हुए? यज्ञ के आदि में भी मिले थे और अभी भी कितने लंबे समय के बाद फिर मिले हैं। शिकीले का मतलब ये नहीं है कि 5000 साल पहले मिले थे, नहीं, हाँ यही इसी दुनिया में पहले भी मिले थे और अभी बहुत दिनों के बाद फिर मिले हैं। अर्थ लगा सकते हैं क्योंकि ये शूटिंग पीरियड है, 5000 वर्ष के ड्रामा की यहाँ शूटिंग होती है, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले और किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। हद के बाप में और बेहद के बाप में क्या अंतर है? हद का बाप 2, 4, 8, 15, 20, 25 बच्चों का बाप होगा, बहुत में बहुत 100-200 करोड़ का बाप होगा, 500 करोड़ का बाप नहीं होगा। और ये बाप जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सब का बाप है। हर धर्म की जो भी आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं सब का बाप है। वो धर्म पिताएं जैसे क्राइस्ट हुआ, उनके फॉलोअर्स 150-200 करोड़ होंगे, लेकिन वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन तो होंगे, दूसरे धर्म के तो नहीं होंगे। और ये बाप तो सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है, तो बेहद के बाप को मिले हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, वो ही बच्चे जानेंगे जिनको निश्चय है। क्या बेहद का बाप से हम बच्चे मिलते हैं ये सब नहीं जानेंगे, वो ही जानेंगे जिनको निश्चय पक्का हो गया है कि ये हमारा बेहद का बाप है। बरोबर, हम तो बेहद के बाप से मिले, क्योंकि बाप होते ही है हद के और बेहद के। हद के बाप इस लौकिक दुनिया में होते हैं और ये बेहद का बाप पारलौकिक दुनिया का है, इस दुनिया का नहीं है। दुख में सभी बेहद के बाप को याद करते हैं, सतयुग में ही बाप को याद करते हैं, लेकिन वो लौकिक होता है, क्योंकि वहां तो है सुखधाम, वहां बेहद के बाप को कोई याद करने की दरकार नहीं है। लौकिक बाप उनको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देते हैं, इस लोक में। अब देखिए जो बाप होते हैं, चाहे वो 1, 2, 4, 8, 10 बच्चों का बाप हो और चाहे वो धर्म पिताओं जैसा कोई भी बाप हो, वो अपने फॉलोअर्स बच्चों को जन्म कहाँ देते हैं? इसी लोक में देते हैं। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर के तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक के हो, जिसको पारलोक परमधाम भी कहा जाता है, वो है परेते परिधाम। स्वर्ग को कोई परे ते परे धाम नहीं कहेंगे। स्वर्ग कब से होता है?
संगम से
नहीं, संगम में स्वर्ग नहीं कहेंगे। बैकुंठ होता है, जिसे बैकुंठ का गायन स्वर्ग क्या नाम शास्त्रों में, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी पैराडाइज नाम दिया है, मुसलमानों के शास्त्रों में भी जन्नत नाम दिया है। वो उस समय की यादगार है जबकि बाप बेहद का इस सृष्टि पर आया हुआ था, अभी भी आया हुआ है। तुमको पार लोक में ले जाते हैं, काहे काहे से पार है, दुखधाम की दुनिया से भी पार और ये सुखधाम की दुनिया से भी पार। परे ते परे, ये जो स्वर्ग की दुनिया है ये परे है, काहे से परे है, दुखधाम की दुनिया से परे है और उससे भी परे। माना सत्युग त्रेता की जो दुनिया है नरक की दुनिया से परे, उससे भी परे ले जाते हैं। उससे परे क्या है? बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस षष्टि पर उतार लेंगे, तो इस षष्टि पर जब उतार लेंगे तो वो परम धाम जहाँ वेद का बाप भी होगा और हम वेद के बाप के बेहद के रूहानी बच्चे भी होंगे, हद के बच्चे नहीं होंगे। क्या हद के बच्चे? वो जो पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं, कुछ न कुछ देवान उनमें रह जाता है तो कम जन्म लेते। और तुम मेरे बेहद के बच्चे, पक्के रूहानियत को धारण करने वाले, 100% पक्की आत्मा बनते हो। तो तुम जो बेहद के बच्चे हो, मैं उनको उस परे ते परे धाम में ले जाता हूं। पारलोक भी कहा जाता है तो परम धाम भी कहा जाता है। वो है परे ते परे धाम स्वर्ग, उसको कोई परे ते परे नहीं कहेंगे। क्या स्वर्ग को परे कहेंगे या परे ते परे कहेंगे? दुख धाम से परे है स्वर्ग, जहाँ रामकृष्ण का राज्य होता है वो दुख धाम के पार है, लेकिन उससे भी पार वो लोक है जहाँ बाप तुमको ले जाते हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। क्या स्वर्ग भी इस दुनिया में होता है और नरक भी इस दुनिया में होता है? नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी तो पतित दुनिया है, सब पतित है। पतित दुनिया में कोई पावन हो नहीं सकता। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, कौन सी दुनिया में पुकारते हैं? पतित दुनिया में पुकारते हैं हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। ये नहीं कहते हैं कि हे पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ, ब्रह्मा के तन में आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ आकर के हमको पावन बनाकर जाओ। मना ज्ञान सुनाने का मकसद नहीं है, लक्ष्य ज्ञान सुनाना नहीं है, लक्ष्य क्या है? पतित दुनिया को पावन बनाना। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां तो सब पावन होते हैं, उनकी मेंटेलिटी नीचे गिरती नहीं, उनकी दृष्टि नीचे जाती नहीं, भ्रष्ट दुनिया की ओर, भ्रष्ट तन, भ्रष्ट शरीर की ओर उनकी कर्मेंद्रियां जाती हैं क्या? नहीं जाती। उनका मन भी नहीं जाता, तन भी नहीं जाता, और उनका धन भी पाप कर्मों में नहीं जाता। जब से रावण राज्य होता है तब से पतित बनते हैं। रावण राज्य माने दस सिरों का राज्य, अनेकों का राज्य। राम राज्य सतयुग त्रेता में होता है, वहां एक का राज्य स्थापन किया हुआ है, और द्वापर युग से नाम ही पड़ता है द्वापुर, एकपुर नहीं द्वापुर, माना दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो देश हो जाते हैं, दो दो राजाएं हो जाते हैं, दो दो धर्म होते जाते हैं, दो दो वंश होते जाते हैं, दो दो भाषाएं होती जाती, हर बात में द्वैत फैलता जाता है। तब जब दो दो हो तो जाएगा तो झगड़ा, झगड़े की दुनिया होगी। वो रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। इनको कहेंगे पांच विकारों का राज्य, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी कोई है 100% इस दुनिया में, उनका राज्य शुरू होता है। सतयुग में है निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, विदेशों की इतनी महिमा नहीं है। महिमा किसकी है?
भारत की।
भारत की क्यों? बाबा आते हैं भारत में, आते हैं विदेशों में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं विदेशों में? वहाँ मनुष्य नहीं रहते क्या? रहते तो हैं, लेकिन वो सब विकारी रावण को फॉलो करने वाले हैं, बाप को फॉलो करने वाले नहीं है। बाप तो निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी है, इसलिए बाप भारत में आते हैं, विदेशों में नहीं आते। भारत में ही जितनी कन्याओं माताओं की पवित्रता की सुरक्षा होती है, उतनी और किसी देश में सुरक्षा नहीं होती। तो सतयुग में निर्विकारी राज्य है, बहुत जबरदस्त महिमा है भारत की, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं। और विकारी बना, भारत निर्विकारी था और भारत अब विकारी बन गया है, इसलिए उसकी महिमा को जानते नहीं। भारत ही संपूर्ण निर्विकारी था, और जो दूसरे देश बनते हैं, दूसरे देशों की जो आत्माएं हैं, वो निर्विकारी बनती तो है नंबर वन, लेकिन भारत जितनी निर्विकारी 100% नहीं बनती। कुछ न कुछ उनमें विकार की वास रह जाती है, वासना रह जाती है, इसलिए वो आत्माएं पूरे 84 जन्म नहीं लेती, और भारत और भारतवासी पूरे 84 जन्म। मान लो सतयुग का दूसरा जन्म है, दूसरे जन्म में दूसरे नंबर का नारायण होगा, दूसरे नंबर के नारायण की दूसरे नंबर की प्रजा भी होगी, तो कितने जन्म लेने वाली होगी?
83
जन्म लेने वाली होगी। एक जन्म उनका कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि पूरी रूहानियत को उन्होंने धारण नहीं किया। जब उनके राजा ने पूरी रूहानियत को धारण नहीं किया, तो उनके पीछे पीछे आने वाली प्रजा भी पूरी रूहानियत को धारण नहीं करती, इसलिए एक जन्म उनका भी कम हो जाता है। तो जो जिनका एक जन्म कम हो गया, थोड़ा देह भान रह गया होगा पुरुषार्थ करने में, तो वो ही आत्माएं जब द्वापर में जन्म लेते लेते आती है तो वो हम भारतवासियों को धोखा दे देती है और दूसरे धर्म में दूसरे देश में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर उनकी महिमा कैसे होगी? महिमा धोखेबाज की होगी क्या? पहले नारायण की महिमा है या सतयुग के दूसरे तीसरे चौथे नारायण की महिमा है? जो भी मंदिर बनते हैं वो एक नारायण के बनते हैं, जो नर से नारायण बनता है उसके मंदिर बनते हैं, या सात और जो नारायण है सतयुग के उनके मंदिर बनते हैं? उनके मंदिर भी नहीं बनते, उनकी मूर्तियां भी नहीं बनती, उनकी पूजा भी नहीं होती। जो सोलह कला संपूर्ण नारायण है उनके मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है, मूर्तियां भी बनती है। तो भारत निर्विकारी था तब लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, अभी तो वो राज्य ही नहीं, तो वो कहां गए? वो लक्ष्मी नारायण जो भारत में राज्य करते थे सतयुग के आदि में, वो कहां गए? ये भी पत्थर बुद्धियों को पता ही नहीं है, कहां गए होंगे? अरे इसी सृष्टि पर मौजूद होंगे ना, जन्म लेते लेते नीचे गिरते गिरते संग के रंग में आते आते एकदम तमो प्रधान बन जाते हैं। नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि ऊपर से दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं नीचे उतरती रहती है और ढेर की ढेर तादाद में उतरती है, उनके संग के रंग में आते हैं तो नीचे गिरते हैं। सतयुग में तो सब आत्माएं सोने जैसी होती है, सच्चाई होती है उनमें, और त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं आती है। कहां सोने की वैल्यू और कहां चांदी की वैल्यू? तो जो चांदी जैसी आत्माएं ऊपर से आती है और वो तादाद में कई गुनी होती है, कितनी गुनी? सतयुग के अंत की आबादी 2 करोड़ और त्रेता की अंत की आबादी 10 करोड़, तो कितने गुनी हो गई? 5 गुनी आत्माएं ऊपर से नीचे उतर आती है, कम से कम 4 गुनी तो उतरती है सतयुग की 2 करोड़ और उनकी 4 गुनी 8 करोड़, कितनी हो गई टोटल? 10 करोड़ आत्माएं त्रेता में इस सृष्टि पर उतर आती है। तो जब 54 आत्माएं नीचे आ गई तो उनके संग का रंग त्रेता में लगता है, द्वापर शुरू होता है तो तांबे जैसी आत्माएं उतर। तांबे का रंग कैसा होता है? लाल रंग से मिला हुआ होता है, माने महाकामी और महाक्रोधी आत्माएं उतरती है और वो भी ढेर की ढेर तादाद में। तो उनके संग के रंग में आने से वो देवताएं देव आत्माएं और जास्ती नीचे गिरती है और कलयुग में तो बेशुमार आत्माएं उतरती है। तो इस तरह भारतवासी आत्माओं का पतन होता रहता है संघ के रंग में आने से। तो अब बाप कहते हैं इन अनेकों के संघ के रंग में आने से तुम पतित बन पड़े, तो अब क्या करो? एक के संघ के रंग में आवेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। लेकिन एक के संघ के रंग में आवे कैसे? पक्की पहचान हो तब तो आवे। पक्की पहचान होती भी है तो माया बीच में वायलोरा डाल देती है। तुम कहते हो बाप आया हुआ है, माया कहती है नहीं, ये हो नहीं सकता कि बाप आया हुआ है। अरे बाप तो पहले आया हुआ था ब्रह्मा के तन में, वो तो पढ़ाई पढ़ा के चला गया, अब बाप कहां से आवेगा? तो माया बुद्धि को भरमाए देती है और हमारी बुद्धि ब्रह्म में पड़ जाती है। तो सब बच्चों की बुद्धि ब्रह्म में पड़ेगी? ये कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी है? होंगे तो सूर्यवंशी बच्चे होंगे, वो नंबरवार नहीं होंगे? नंबरवार कैसे बनेंगे? अगर माया उनको प्रताड़ित न करे, उनकी बुद्धि को न घुमाए, तो नंबरवान कैसे बनेंगे? कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहे छाती ठोक करके, माया हमको कभी भी लोढ़ा नहीं खिला सकती है? बाप सर्वशक्तिमान है और माया भी सर्वशक्तिमान है, इन दोनों का टाइटल सर्वशक्तिमान का है, तो बच्चों का टाइटल तो सर्वशक्तिमान का नहीं है। कोई बच्चा है ऐसा? माया का टाइटल है सर्वशक्तिमान और बाप का भी टाइटल है सर्वशक्तिमान, इसके इन दो के अलावा और किसी का टाइटल है? तो माया उनकी बुद्धि को भरमा सकती है ना। तो मुरली ने बोला ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया हमको पछाड़ती नहीं। ऐसा एक भी नहीं है जिसको माया पछाड़ती न हो। अरे बाप के रूप में जब पार्ट बजाने वाली आत्मा को ही यज्ञ के आज में माया ने पछाड़ खिला दी, राम फेल हुआ कि नहीं? राम बाप ही फेल हो गया जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, जगत पिता है, तो बच्चा कौन सा रह जाएगा? तो माया सबको फेरा खिलाती है। ये हो सकता है कोई को कम समय के लिए और कोई को लंबे समय के लिए। जिनको बहुत कम समय के लिए लोढ़ा खिलाती है वो निकलते हैं आठ। अभी अभी अनिश्चय बुद्धि हुए और अभी अभी थम गए, तो वो आठ जो है वो तो धर्मराज सजाए नहीं खाते। आखिरी जन्म में तो उनको भी गिरना है कि नहीं गिरना है? आखिरी जन्म में अगर वो नीचे न गिरे, पतित न बने, तो फिर पतित से पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करने की क्या दरकार? वो आठ जो है जो धर्मराज सजाए नहीं खाते, वो भी आखिरी जन्म में आकर के दूसरे धर्मों के चक्कर में आ जाते हैं, माया के, माया रावण के प्रभाव में आ जाते हैं। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं जिनकी भारत में अष्ट देवों के रूप में पूजा होती है, नवग्रहों के रूप में भी पूजा होती है, जो जो अनुष्ठान किया जाएगा तो उस अनुष्ठान में उनकी भी, भगवान के साथ उनकी भी पूजा होती है। बाप कहते हैं जो राज्य मैंने स्थापन किया था वो राज्य अब नहीं है, और सारी दुनिया के ऊपर किसका राज्य है? रावण का राज्य। कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहे कि हमारे ऊपर रावण का राज्य नहीं है, हम राम की ही श्रीमत पर चलते हैं हमेशा है? माया हमको भ्रमित नहीं करती? कोई नहीं कहेगा, सबको माया भ्रमित करती जरूर है। तो अभी अभी सब रावण के राज्य में, राम का राज्य है कहाँ? अभी कहीं राम का राज्य है? है नहीं? क्यों? एक दो आत्मा के ऊपर तो होगा।
हाँ है,
एक दो आत्मा के ऊपर रावण राम का राज्य है। अच्छा, राम का राज्य, राम की जो पहली रचना है राम की सीता, उसके ऊपर अपना राज्य है? जिसका अपनी घरवाली के ऊपर ही राज्य नहीं है, उसका दूसरे बच्चों के ऊपर राज्य कैसे हो जाएगा? अभी राम का राज्य नहीं है। देखो सभी अपने अपने धर्म स्थापकों को जानते हैं, दूसरे धर्म वाले उनसे पूछो तुम्हारा धर्म स्थापक कौन है, तो बताएंगे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन से पूछो बताएंगे क्राइस्ट है। मुसलमानों से पूछो कहेंगे मोहम्मद है। सिखों से पूछो तो कहेंगे गुरु नानक है। एक भारतवासी है जो मुझे हुए हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हमारा धर्म का स्थापक कौन है और हमारा धर्म कौन सा है। धर्म भी पता नहीं, धर्म स्थापक का भी पता नहीं। और धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं, परंतु वो फिर कब स्थापन करने आवेंगे ये नहीं जानते हैं कि क्राइस्ट अब दोबारा कब आवेगा, मोहम्मद कब आवेगा, उनको ये पता नहीं। और तुमको, तुमको अभी ये पता है कि ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, इस 5000 वर्ष के चक्र में सब जितने भी पार्टधारी हैं, ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी और नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाले सबको इन 5000 वर्ष के अंदर आना पड़ता है। सिख लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले नहीं था है? ये पता नहीं है उनको कि 500 साल पहले सिख धर्म नहीं था। सिखों की तो हिस्ट्री 500 साल के अंदर की है, उससे पहले तो सिख धर्म नहीं था। लेकिन उनसे पूछो तुम्हारा सिख धर्म कब से चला आया, तो कहते हैं अनादिकाल से चला आया, क्योंकि सिखों को भी हिंदू माना जाता है। गुरु नानक ने आकर के स्थापन किया, तो गुरु नानक के बाद से ही सिख धर्म शुरू हुआ ना, उससे पहले तो सिख धर्म नहीं कहेंगे। तो गुरु नानक आकर के फिर स्थापन करेंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। नानक अभी कहाँ है ये कोई भी सिख नहीं जानते, कहाँ होगा, चाहे नानक हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये सब कहाँ होंगे, इसी दुनिया में कहीं न कहीं होंगे जरूर, कोई न कोई रूप में। पहले क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, 2000 साल पहले क्राइस्ट ही नहीं आया था, तो क्रिश्चियन धर्म कहाँ हुआ, बाद में स्थापन हुआ। पहले तो सिर्फ नई दुनिया थी, उस नई दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था और एक ही राजा था, और सिर्फ तुम भारतवासी ही थे, दूसरे धर्म भी नहीं थे, धर्मखंड भी नहीं थे और धर्मखंड के वासी भी वहां नहीं थे। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ये सब भूल गए कि हम ही देवता थे, फिर हम ही ने 84 जन्म लिए हैं क्या। यहाँ बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये बात पक्की नहीं होगी, हम ब्राह्मणों में ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन नंबर बार ब्राह्मण है, लेकिन ये पक्का किसी को नहीं होगा कि हम पक्के पूरे 84 जन्म लेने वाले। जो पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाले हैं वो ही वास्तव में भारतवासी है, अगर कम जन्म लेने वाले हैं तो जरूर फिर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर भारतवासी कहां हुए, अगर भारतवासी होते तो कन्वर्ट ही नहीं होते। तो तुमको निश्चय है कि हमने ही 84 जन्म लिए, तो बाप कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, लिए तो हैं तुमने 84 जन्म, लेकिन तुम भी अपने 84 जन्मों को जानते नहीं हो कि कैसे कैसे कहां कहां किस देश में किस रूप में हमने 84 जन्म लिए। अभी मैं बताता हूं क्या, वो प्रोसीजर मैं बताता हूं कि तुमको कैसे पता चलेगा कि तुमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए। आधा कल्प राम राज्य था, फिर आधा कल्प रावण राज्य हुआ है, पहले पहले सूर्यवंशी घराना था, बाद में चंद्रवंशी आए। तुम्हारी बुद्धि में है तो क्या, पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर इस्लाम वंशी, फिर बौद्धी वंशी, सब वंशों का तुमको पता है। तो मुख्य मुख्य कितने वंशी हुए, नौ मुख्य धर्म हुए, नौ मुख्य धर्मों की ब्राह्मणों की नौ कुरियां बन गई, जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो द्वापर युग से कन्वर्ट हुए। द्वापर युग से दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हुए वो ही आकर के फिर यहाँ संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। वो द्वापर युग से कन्वर्ट हुए। द्वापर युग से दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हुए वो ही आकर के फिर यहाँ संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। जो कन्वर्ट नहीं होते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनते। क्या जो सिख धर्म के हो चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, जो अपने धर्म के पक्के होते हैं कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो आकर के यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान अभी नहीं बनते। लास्ट में जाके भले माने लेकिन अभी मानने वाले नहीं है। तो वो जो धर्म में अपने पक्के रहते हैं वो तो भारतवासी है ही नहीं, लेकिन जो यहाँ के भारतवासी थे लेकिन कच्चे थे, पूरे 84 जन्म जिन्होंने नहीं लिए लेकिन स्वर्ग में आए, सत्ययुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में आते हैं और वो कच्चे होने के कारण फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही आत्माएं फिर अभी ब्राह्मण आकर के बनती है ब्राह्मणों की दुनिया। इसलिए नंबर वार ब्राह्मण हो जाते हैं, नौ कुरी के ब्राह्मण हो जाते हैं, नौ धर्मों से कनेक्टेड नौ कुरी के ब्राह्मण जो है वो भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। ऊंचे से ऊंचे गोत्र वाले भी हैं और नीचे नीचे से नीचे से नीचे गोत्र वाले भी है, लेकिन सबसे ऊंचा किसको बताया? बाबा ने बताया सबसे ऊंचे है, सबसे पहले है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी है देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। अभी रावण राज्य हुआ है, सूर्यवंशी के बाद होता है चंद्रवंशी घराना। सूर्यवंशी में लक्ष्मीनारायण का राज्य था। हम जो सूर्यवंशी घराने के थे सोई फिर 84 जन्म लेते हैं, जो चंद्रवंशी घराने के हैं वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, उनका कुछ न कुछ 84 जन्मों में से कम हो जाता है। किसके वंश के? चंद्रवंशी। कौन है चंद्रमा? चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाना है, माने वाली आत्मा है कृष्ण चंद्र। 16 कला संपूर्ण कही जाती है, तो वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण चंद्र की आत्मा वो पूरे 84 जन्म लेती है या कुछ कम हो जाता है? कितना? 69 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और 69 में जब शरीर छोड़ दिया तो अभी तक तो उनको जन्म मिला नहीं। जब नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया के बीच में नई दुनिया का वर्षा तुम बच्चों को देता हूँ, ऐसी दुनिया जब बनेगी तब पहला पहला पत्ता कृष्ण का जन्म होगा, तो 50 वर्ष उनके कम हो जाते हैं, 69 से लेकर के और 2018-19 तक का जो टाइम है उनको अपना शरीर नहीं मिलता। तो पूरे 84 जन्म कहेंगे या 50 वर्ष कम हो गए? 50 वर्ष कम हो गए। तो चंद्रवंशी आत्माएं जो है वो जल्दी कन्वर्ट होगी। क्या माँ का पार्ट है ना, माँ बच्चों के प्रभाव में जल्दी आती है कि बाप प्रभाव में जल्दी आता है? माँ जल्दी प्रभाव में आ जाती है। क्यों बाप क्यों नहीं प्रभाव में आता जल्दी?
माँ का जल नरम होता है।
क्यों होता है? मोह होता है माता को, पेट से बच्चे माँ के पैदा होते हैं, बाप के पेट में से पैदा होते नहीं, ना पेट में 9 महीने पलते हैं। पलते कहाँ हैं? ज्यादा संग का रंग कहाँ लगता है? माँ का लगता है। तो माँ को मोह लग जाता है बच्चों में, वो मोह जो है और इस सकल व्याधन कर मूला बताया गया। और मोह के कारण माँ जो है उदान खास्ता अगर पति मर जाता है तो माँ बच्चों के आधीन आधीन हो जाती। तो तुम अभी रावण वंश के बने हो, 84 जन्म लेते लेते क्या कितने जन्म लेने के बाद तुम अभी रावण वंश के बने हो, 84 जन्म लेते लेते तुम अब बने हो आकर के लास्ट में कौन से वंश के, रावण वंश। माना तुम्हारा जो कन्वर्शन है सबसे बाद में होता है, इतने जन्मों तक द्वापर युग से लेकर के अब तक तुम लड़ाई लड़ते आए रावण से। कौन तुम माने कौन, सूर्यवंशी बच्चे, किससे लड़ाई लड़ते आए,
राम
से नहीं,
रावण
से लड़ाई लड़ते आए। जो भी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि हैं उन सबसे लड़ाई होती चली आई। आगे पुण्यात्माओं के घराने में थे, अभी लास्ट जन्म में आकर के हमको पापात्माओं का घराना मिलता है। प्रहलाद का जन्म कहाँ होता है, हिरण्यकश्यप के कुल में होता है। अभी पापात्माओं के घराने के बने हैं, तुम 84 जन्म लेते हैं ना, वो तो 84 लाख कह देते हैं। भक्ति मार्ग में कितने जन्म बताए देते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद फिर एक जन्म मिलता है मनुष्य जन्म। अब ऐसा तो है नहीं, 84 लाख योनियां तो होती हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है। हाँ ये हो सकता है कि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो ऊंचा उठ के देवता बन जाता है, मनुष्य जब बुरे कर्म करता है बहुत पाप कर्म करता है तो मनुष्य से नीचे गिरकर राक्षस बन जाता है, दुखदाई बन जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हो, 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करता, लेकिन मनुष्य के स्वभाव संस्कार उन योनियों की तरह हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, है? मनुष्य के स्वभाव से संस्कार बंदरों जैसे हो सकते हैं, मनुष्य के स्वभाव संस्कार हाथी जैसे देह अभिमानी हो सकते हैं, मनुष्य का स्वभाव संस्कार कीड़े मकोड़ों में सल हो सकता है, लेकिन कीड़ा मकोड़ा बनता नहीं। तो अभी 84 लाख कौन बैठ विचार करेंगे, हैं? 84 लाख का विचार तो कोई नहीं करेगा, तुम 84 जन्म लेते ही नहीं हो, 84 लाख जन्म, इसलिए कोई का विचार चलता नहीं है। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम बाप के आगे बैठे हो, कौन कौन बैठे हो बाप के आगे, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बाप के आगे बैठते हैं, जो सूर्यवंशी नहीं है पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं वो किसके आगे बैठते हैं, है? या तो चंद्रवंशियों के आगे बैठेंगे, या इस्लामियों के आगे बैठेंगे, बौद्धियों के आगे बैठेंगे, लेकिन सूर्य को पहचानेंगे भी नहीं और सूर्य बाप के सामने बैठेंगे भी नहीं। निराकार बाप और साकारी बाप दोनों ही बाप भारत में नामी ग्रामी हैं। कौन हुआ निराकारी और कौन हुआ साकारी, निराकारी बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाप, वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का और कोई संबंध उसके साथ बनता नहीं है। बिंदु बिंदु आत्माएं सब आपस में भाई भाई और वो बाप, वो बिंदु आत्माओं को ये भी नहीं कहेंगे भाई बहन, शरीर ही नहीं है तो भाई बहन कहां से, क्या है आत्मा सब भाई भाई, और वही सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तब संबंध बनते हैं। फिर वो बाप भी बन सकता है और वो गुरु भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है, साजन भी बन सकता है, अनेक प्रकार के संबंध उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोनों ही बाप नामी ग्रामी है, एक ऊपर से आने वाला निराकार और एक ही सृष्टि में 84 जन्म लेने वाला साकार बाप। कहां नामी ग्रामी है, कौन से जन्म में नामी ग्रामी है? नामी ग्रामी है शास्त्रों में, शास्त्रों में प्रजापति का भी गायन है, जैसे राम का गायन है वैसे प्रजापति का भी गायन है और निराकार शिव का भी गायन है। उनकी यादगार बनी हुई है, निराकार की यादगार शिवलिंग, गांव गांव में शहर शहर में शिवलिंग के मंदिर बने हुए हैं। उससे जास्ती मंदिर और किसी के किसी देवता के भी नहीं होते, उसके सबसे जास्ती मंदिर और सबसे जास्ती पूजा भी उसी की होती है, लिंग के रूप में निराकार के रूप में। गाते तो हैं परंतु उस बाप को जानते नहीं, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। ज्ञान से जागृति होती है, अज्ञान से सो जाते हैं। रोशनी में मनुष्य कब धक्का नहीं खाते हैं? दिन में धक्के खाते हैं क्या? रात होती है, अज्ञान की रात होती है तो धक्के खाते हैं। तो अज्ञान की रात कब से होती है? द्वापर युग से अज्ञान की रात होती है। तो मनुष्य दर दर भक्ति मार्ग में ठोकरें खाते हैं, कहीं इस तीर्थ में जाते हैं, कहीं उस तीर्थ में जाते हैं, कहीं जाकर के जन्म लेते हैं क्रिश्चियन धर्म में, कहीं बौद्ध धर्म में जन्म लेते हैं, तो गिरजाघर गुरुद्वारों के चक्कर काटते हैं। तो वो सब अज्ञान अंधेरे का रास्ता है। और अभी बाप ज्ञान सूर्य आया हुआ, वो आकर के हमें रोशनी देते हैं ज्ञान की। अभी तुम धक्का नहीं खा सकते हो क्या? ज्ञान की रोशनी तो तुम लेते हो, लेकिन जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं उनके मुकाबले तुम्हारी ज्ञान की रोशनी में और उनकी रोशनी में बहुत अंतर है।